ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ श्रुतात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सवसाहूणं अन्ताय मच्छरहिया जाय जरामरणन्तपोरढा संसारलयातमहं जीर्णच्छिन्नाजिनं वन्दे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिर्षभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चतुर्थ पुस्तक, इसमें भी वो स्थिति विभक्ति अधिकार चल रहा है, उसमें हम उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति में भुजगार अल्पतर आदि की बात कर रहे हैं और पृष्ठ संख्या 9 पर आ गए। 9 कल हमने देखा था, ये तो उत्तर प्रकृतियों में तो भुजगार वगैरह की जो बात हमने देखी थी, उसमें भी स्वामित्व का प्रकरण चल रहा है। भुजगार में, अल्पतर में, अवस्थित आदि में कौन कौन स्वामी है उसकी बात चल रही है। तो उसमें हमने देखा था मिथ्यात्व प्रकृति के भुजगार, अल्पतर, अवस्थित, ये 3 हो गए, उसमें अवक्तव्य नहीं होगा, क्योंकि एक बार क्षय होने के पश्चात फिर उसकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती। तो चारों ही गति के जीव इसको कर सकते हैं, ये बात हमने देखी थी। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में हमने देखा था कि उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, अवक्तव्य भी हो सकता है, क्योंकि उसकी सत्ता में नाश होने के पश्चात यानी निस्सत्व होने के बाद फिर उसी की सत्ता हो सकती है, उसके भी हमने स्वामी देखे थे। अब यहां हम 9 पृष्ठ पर आ गए हैं। सम्यक मिथ्यात्व के बारे में हम कल पढ़े रहे थे, उसको दोबारा वहां से लेते हैं। 8 पृष्ठ पर जो 17 नंबर का पॉइंट है वहां से पढ़ेंगे। सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा तो जिसके नीचे और ऊपर एक निषेक अधिक हो, ऐसे मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर अवस्थितपना प्राप्त होता है। सम्यक प्रकृति के बारे में हमने देखा था कि जो मिथ्यात्व अवस्था में जिसकी स्थिति तो मिथ्यात्व के समान कहेगी, फिर भी उसके निषेक है वो उदय रूप प्रकृति से एक निषेक कम था, और जब सम्यक्त्व प्राप्त होता है तो उतने ही निषेक रहते हैं, क्योंकि जो अनुदय रूप यहाँ निषेक था हमने 4 माने थे, सम्यक तो प्राप्त होने पर वो उदय रूप होगा, क्योंकि वो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की समान स्थिति थी, तो उसमें बढ़ने का भी कोई चांस नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व में क्या ले रहे हैं, यहाँ तो हमने ऊपर की स्थिति समान लेवल पर ली थी, वहां मिथ्यात्व की एक एक्स्ट्रा सत्ता में जो है एक अधिक वाली ले, और उदय रूप भी मिथ्यात्व की एक है। जब वो जीव सम्यक तो प्राप्त करता है तो वहां तो उदय रूप नहीं था, वहां भी उदय रूप तो नहीं है, तो उदय होते होते वो सम्यक तो रूप से टर्न होकर उदय में आएगा, वहां भी उदय रूप तो है ही नहीं, तो वो तो सम्यक तो रूप हो जाएगा, और मिथ्यात्व में ऊपर जो एक्स्ट्रा था वो सम्यक मिथ्यात्व में टर्न हो जाएगा, तो उसका भी काल उतना ही कहलाएगा। तो यहाँ हम 17 नंबर का पॉइंट पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा तो जिसके नीचे और ऊपर एक निषेक अधिक हो, ऐसे मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर अवस्थितपना प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में एक निषेक के स्थिभुक संक्रमण के द्वारा चले जाने पर ऊपर एक निषेक की वृद्धि देखी जाती है, किंतु चूर्णी सूत्रकार ने तो काल की प्रधानता से कथन किया है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने सम्यक्त्व प्रकृति से एक समय अधिक स्थिति वाले मिथ्यात्व के साथ सम्यक्त्व प्राप्त होने पर सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का अक्रम से अवस्थितपना कहा है। इससे मालूम होता है चूर्णी सूत्र में काल की प्रधानता से कथन किया है। इतना तो हमने कल पढ़ा था, अब आगे पढ़ेंगे। दूसरे, यदि निषेकों की अपेक्षा ही सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का अवस्थितपना स्वीकार किया जाए तो अंतरकरण करके और मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति को गलाकर दूसरी स्थिति में, जिसने दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों का स्थिति सत्कर्म प्राप्त कर लिया है, ऐसे प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि के भी सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का अवस्थितपना प्राप्त होता है, क्योंकि वहां पर दर्शन मोह के निषेकों का गलन नहीं होता। ये तो और आसान बात है, जब औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो द्वितीय स्थिति में जितना मिथ्यात्व था उसमें से सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृतियां तैयार हुई, तो वो जितनी है तो उपशम काल में उतनी ही रहेगी, क्योंकि उसका उदय ही नहीं है, ना उसका नीचे आना है, पर वहां उतनी ही कायम पड़ी रहेगी जितना उपशम काल है। परंतु यति ऋषभ आचार्य ने यहां पर अवस्थितपने का कथन नहीं किया है, उसको अवस्थितपना नहीं कहा है। इससे जाना जाता है कि यति ऋषभ आचार्य ने इस उद्देश्य में काल की प्रधानता से कथन किया है, यानी वहां भी काल की ही प्रधानता ली है उन्होंने, क्योंकि वहां जितनी कुछ स्थिति होगी भले उसका उदय नहीं है परंतु एक एक समय तो उसमें घटेगा ही, वो अपेक्षा उन्होंने स्वीकार की है। युक्ति से भी यही अर्थ जुड़ता है, क्योंकि कर्म स्कंदों का कर्म रूप से रहना ही कर्म स्थिति कही जाती है, भले उसका उदय नहीं हो परंतु उसमें एक एक समय तो घट ही रहा है, तो स्थिति कर्म स्थिति तो कम हो ही रही है वहां पर। केवल कर्म स्कंद स्थिति रूप नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, कर्मस्कंदों का कर्म रूप से रहना उसको कर्म स्थिति कहेंगे, मात्र कर्मस्कंद है पड़ा हुआ उसको स्थिति नहीं कहते हैं, क्योंकि प्रकृति स्थिति और अनुभाग के आधार को केवल स्थिति मानने में विरोध आता है। क्या कहते हैं, हमने कल देखा था ना, विशिष्ट कर्म की स्थिति बांधी है, पहले भी हमने यही देखा था, 70 कोड़ाकोड़ी भी बांधी है, अभी उसके बदले हम मान लेते कि 100 उसने बांधा है, तो उसमें से तो कुछ हम 10 उसका आबाधा समझते हैं और वहां 90 उसके स्थिति के यानी निषेकों की रचना हुई, यानी इतने ये उसका कर्म स्कंद है। अब आबाधा काल में तो इसका उदय नहीं है, फिर भी अब मान लेते हैं ये 10 समय का आबाधा लिया था, उसमें से 5 समय बीत गए, तो ये जो 100 नंबर का निषेक था उसकी स्थिति अब कितनी रही, 95 समय की। ये काल की प्रधानता है, क्योंकि ये पूरा स्कंद तो यहीं पड़ा है, उसमें से कुछ नहीं उदय में आया है, फिर भी अभी इसकी स्थिति 5 समयों से घटी कहेंगे हम। वैसे ही औपशमिक समय को प्राप्त होता है तो बीच में अंतर किया जाता है और नीचे के निषेक अधोस गलना के द्वारा चले जाते हैं। अब यहां पर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है उसके, तो अंदर जो अंत कोड़ाकोड़ी उपशम सम्यक्त्व तो प्राप्त किया है ना, अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण मिथ्यात्व तो भी है, सम्यक्त्व तो भी है, सम्यक मिथ्यात्व तो भी है, तो दूसरे समय भी इतना है, तीसरे समय में भी इतना ही है, परंतु काल की अपेक्षा विचार करेंगे इसका तो इसमें से एक समय, दो समय, तीन समय, काल तो घट रहा है, यानी अकेले कर्म स्कंद कितने पड़े हैं निषेक, उससे कुछ मतलब नहीं, तो कितने काल तक कर्म रूप से रहने वाले हैं उसको यहाँ स्थिति कही, ये बात बताना चाहते हैं। और अंत में क्या लिखा, केवल कर्म स्कंद स्थिति रूप नहीं हो सकता, मात्र यहाँ कर्म पड़े हैं इसलिए इसको स्थिति नहीं कहते, वो कितने काल तक कर्म रूप से रहेंगे उसको स्थिति कहते हैं। और आगे कहते हैं, क्योंकि प्रकृति स्थिति और अनुभाग के आधार को केवल स्थिति मानने में विरोध आता है, यानी ये जो निषेक है बस उसी को स्थिति मान लेना ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें काल को भी हमें लेना है। अब आगे, अवक्तव्य विभक्तियों अन्नदरो, अवक्तव्य विभक्ति वाला कोई भी जीव होता है, ये किसके बारे में बात चल रही है याद है ना, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व को हम एक साथ कंसीडर कर रहे थे, उसमें से चर्चा तो दोनों की अलग अलग भी की, परंतु सूत्र जो 7 पृष्ठ से पूछा गया था उसमें ऊपर के सूत्र में पूछा था सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार और अल्पस्थिति का कौन है, उसके बाद पूछा था अवस्थित स्थिति विभक्ति का स्वामी कौन है, उसकी बात अभी हमने की थी, और अभी पूछ रहे उन्हीं दोनों के बारे में, अवक्तव्य विभक्ति वाला कौन जीव है। प्रश्न पूछे बिना उन्होंने डायरेक्ट उत्तर ही दिया है कि अवक्तव्य विभक्तियों अन्नदरो, अवक्तव्य विभक्ति वाला कोई भी जीव होता है। कोई भी जीव होता है कहने का मतलब उद्वेलना पूरी हो गई है, निस्सत्व हो गया है, अब कोई भी जीव चारों गति में सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, तो उसको अवक्तव्य कहेंगे। हाँ, फिर भी कोई भी यानी सम्यक तो के लिए जो आवश्यक कंडीशन है उसको तो बताएंगे, क्योंकि जिसने सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व को निस्सत्व कर दिया है, ऐसे किसी एक मिथ्या दृष्टि जीव के अन्यतर गति, अन्यतर में क्या क्या लिया, कोई एक में क्या क्या लेना है, तो कोई एक गति, अन्यतर कषाय, यानी किसी भी कषाय के उदय के साथ हो उसको तो सम्यक तो प्राप्त हो सकता है, त्रस पर्याय के योग्य अन्यतर अवगाहना, त्रसों को ही होता है इसलिए किसी भी अवगाहना वाला होगा, कोई भी गति का किसी भी कषाय के उदय के साथ किसी भी अवगाहना वाला, और अन्य तरह लेशा के रहते हुए सभी लेशाएं ली, क्योंकि नारकियों में तो अपनी अपनी अशुभ लेशा होती है और मनुष्य और तिरंचों में 3 शुभ लेशा होती है, देवों की भी अपनी अपनी लेशा होती है, इसलिए 6 लेशा ली। तो अन्य तरह लेशा के रहते हुए प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करने पर सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का अवक्तव्य भाव देखा जाता है। ये प्रथमोपशम जो प्राप्त करेगा तो 26 प्रकृति वाला लेना है, क्योंकि कभी कभी 28 प्रकृति वाला भी प्रथमोपशम करता है जब उन 2 की स्थिति बहुत कम है, उसको नहीं लेना, क्योंकि पूरा निस्सत्व होने के बाद जिसने सम्यक्त्व प्राप्त किया है ऐसा जीव लेना है। ये ख्याल में आई बात, फिर भी विशेष याद बता रहे, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति का स्वामी चारों गतियों का सम्यक दृष्टि जीव हो सकता है, यानी सम्यक्त्व के पहले समय में उसका भुजगार होगा, क्योंकि उक्त दोनों प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति संक्रमण से ही प्राप्त होती है, यानी मिथ्यात्व अवस्था में कम स्थिति थी, सम्यक्त्व प्राप्त होने पर संक्रमण से उसकी स्थिति मिथ्यात्व जितनी हो जाएगी, और इनमें मिथ्यात्व का संक्रमण सम्यक दृष्टि के ही होता है, तथा चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि जीव के उक्त दोनों प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति ही होती है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अधस्थिति गलना यानी उसमें भी समय समय घट रहा है, और उदय रूप होते हुए वो मिथ्यात्व रूप से उदय में आ रहे हैं, तो उसमें भी एक एक समय गल ही रहा है। तो मिथ्या दृष्टि के अधस्थिति गलना और स्थितिघात के द्वारा उत्तरोत्तर इनकी स्थिति में न्यूनता देखी जाती है। जो स्थितिघात होता है वो काहे से होता है? उद्वेलना में कांडक घात भी होते रहते हैं, तो इसलिए स्थितिघात कहा। किंतु जिस सम्यक दृष्टि ने इनकी भुजगार या अवस्थित स्थिति विभक्ति नहीं की, उस सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में और इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता वाले अन्य सम्यक दृष्टि के द्वितीयादि समयों में इनकी अल्पतर स्थिति विभक्ति बन जाती है। क्या कहना चाहते हैं? अभी जिसना भुजगार नहीं किया है, अवस्थित भी नहीं किया है, वो कैसे होता है हमने देखा था। तो कहते हैं पहले समय में, उस सम्यक दृष्टि के पहले समय में इसकी क्या होती है? अल्पतर होती है। जिसने भुजगार या पहले समय में भुजगार होती है, और जिसने भुजगार नहीं की है, ऐसे समय दृष्टि की बात की। द्वितीयादि समयों में इनकी अल्पतर स्थिति विभक्ति बन जाती है। देखो अल्पतर के लिए हमने देखा था, निकालो कल हमने देखा था अल्पतर किसके होती है। अल्पतर सम्यक दृष्टि के भी होता है और मिथ्या दृष्टि के भी होता है। मिथ्यात्व में तो अल्पतर यानी उसकी उद्वेलना होती है, सम्यक तो कहने पहले ही समय से, उसके पहले समय से दूसरे समय में, दूसरे समय से तीसरे समय में अल्पतर होता है। विषय योजना करने वाले का भी अल्पतर होता है। देख पहले समय की बात ख्याल में आई? अन्य सम्यक दृष्टि के द्वितीयादि समयों में इनकी अल्पतर स्थिति विभक्ति बन जाती है। जिस सम्यक दृष्टि ने इनकी भुजगार या अवस्थित स्थिति विभक्ति नहीं की, भुजगार किसने की थी? वेदक सम्यक तो प्राप्त किया ना, पहले उसकी कम थी, उद्वेलना करते करते कम स्थिति रह गई थी, और उसने औपशमिक भी प्राप्त किया होगा या वेदक भी प्राप्त किया, तो पहले ही समय में उसकी भुजगार हो गई। अवस्थित किसके होती हमने देखा था, मिथ्यात्व का निषेक एक ज्यादा था और वहां जाने पर, और सम्यक मिथ्यात्व के बारे में दोनों ओर एक एक ज्यादा था, उसकी अवस्थित होती है। अब यहाँ ऐसा दूसरा एक जीव लिया है कि जिसने भुजगार नहीं की है, वेदक ही लेना पड़ेगा ना, कि किस पहले समय में कैसे घटित करना? आगे पढ़ेंगे। देखो जिस समय दृष्टि ने इनकी भुजगार या अवस्थित स्थिति विभक्ति नहीं की, उस समय दृष्टि के प्रथम समय में और इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता वाले अन्य समय दृष्टि के द्वितीयादि समयों में, बाकी सारे जो सम्यक्त्व संबंधी मार्गणाएं हैं उसमें तो लगातार उसकी स्थिति घटती चली जाएगी। इनकी अल्पतर स्थिति विभक्ति बन जाती है, तथा जिन मिथ्यादृष्टियों के सम्यक्त्व को ग्रहण करने के पहले समय में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति से मिथ्यात्व की स्थिति एक समय अधिक है, पहले समय में ही मिथ्यात्व की स्थिति एक समय अधिक है, उनके द्वितीय समय में सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित स्थिति विभक्ति होती है, क्योंकि ऐसे जीव के यद्यपि सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का एक अधनिषेक तिबुक संक्रमण के द्वारा मिथ्यात्व में संक्रमित हो जाता है, तो भी सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति से मिथ्यात्व की स्थिति एक समय अधिक है। ये मिथ्यात्व अवस्था में बात चल रही है, मिथ्यात्व का उदय है और सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का स्थिबुक संक्रमण के द्वारा उदय रूप निषेक उसमें ट्रांसफर होता है, संक्रमित होता है। फिर भी ऐसा जीव लिया है कि मिथ्यात्व की स्थिति एक समय ज्यादा वाला लिया है, अतः सम्यक दर्शन के ग्रहण करने के पहले समय में, ये पहली बात वो समझा रहे विशेषार्थ है ना, वो पहले जो हमने पढ़ा था उसी को समझा रहे। अतः सम्यक दर्शन ग्रहण करने के पहले समय में मिथ्यात्व द्रव्य के सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमित होने से सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की ऊपर एक समय स्थिति बढ़ जाती है, क्योंकि मिथ्यात्व ज्यादा निषेक थे, कल हमने देखे थे मिथ्यात्व के निषेक ज्यादा है, तो जब सम्यक्त्व प्राप्त होता है तो उसमें संक्रमण होगा, मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बनेगी। अतः जिस समय सम्यक दर्शन को यह जीव ग्रहण करता है उस समय सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की उतनी ही स्थिति प्राप्त होती है। ये बात ख्याल में आई, ये विशेषार्थ की बात जो हमने अभी आते ही पढ़ा था उसकी भी बात है। जितनी सम्यक्त्व ग्रहण करने के पूर्व समय में थी, ये हुआ वाक्य, और इस प्रकार सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित स्थिति विभक्ति बन जाती है। ये तो अवस्थित के बारे में हमने पढ़ा, देखो हमने जो मूल में पढ़ा था सात नंबर में अवस्थित किसके होते हैं, और उन्होंने जो शंका समाधान के द्वारा जो पढ़ा था अभी हमने आते ही जो देखा था, चार निषेक और पांच निषेक देख के, वही बात उन्होंने यहाँ विशेषार्थ में बताई है। यहाँ इस विषय में यह शंका मिला क्या, हम अभी 10 पेज पर पढ़ रहे हैं। यहाँ इस विषय में यह शंका उठाई गई है, इस प्रकार पहले और दूसरे समय में सम्यक्त्व की स्थिति समान भले ही प्राप्त हो जाओ, सम्यक्त्व की समान स्थिति पहले और दूसरा समय कब, पहला समय तो मिथ्यात्व में लेना और दूसरा समय सम्यक्त्व में लेना, पर निषेकों में समानता नहीं हो सकती, किंतु मिथ्यात्व के अंतिम, ये शंका चल रही है, किंतु मिथ्यात्व के अंतिम समय में सम्यक्त्व के जितने निषेक थे सम्यक्त्व ग्रहण करने के समय उनमें एक निषेक बढ़ जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व के अंतिम समय में सम्यक्त्व का एक निषेक स्थिबुक संक्रमण के द्वारा मिथ्यात्व में संक्रमित हो गया, और इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थान में ही सम्यक्त्व का एक निषेक कम हो गया, पर दूसरे समय में सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर सम्यक्त्व का अधस्तन निषेक मिथ्यात्व में नहीं संक्रमित होता, किंतु एक समय स्थिति अधिक मिथ्यात्व के द्रव्य के सम्यक्त्व में संक्रमित होने से सम्यक्त्व का एक निषेक बढ़ जाता है। अतः उक्त प्रकार से सम्यक्त्व की अवस्थित विभक्ति नहीं बन सकती, ये पूरी शंका थी जो कल भी हमने पढ़ी थी। इस शंका का वीरसेन स्वामी ने जो समाधान किया है उसका सार यह है, यद्यपि निषेक में वृद्धि हो जाती है पर स्थिति में वृद्धि नहीं होती, काल उसका उतना ही रहता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अंतिम समय में सम्यक्त्व की जितनी स्थिति थी, हमने चार निषेक देखा था परंतु स्थिति पांच समयों की थी, अंतिम निषेक की स्थिति तो पांचवा समय में था, वो सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर उतनी ही स्थिति प्राप्त हो गई, क्योंकि मिथ्यात्व के अंतिम समय में इसकी स्थिति में यद्यपि एक समय कम हो गया तो भी सम्यक्त्व को ग्रहण करने पर ऊपर एक समय स्थिति में वृद्धि भी हो गई, अतः स्थिति समान रही आई, क्योंकि यहाँ जो मिथ्यात्व का एक निषेध ज्यादा था वो उस रूप संक्रमित हो गया। और स्थिति काल प्रधान होती है, निषेध प्रधान नहीं, इसकी भी उन्होंने चर्चा अभी अभी हमने पढ़ी थी। हाँ, यदि निषेकों की अपेक्षा सम्यक्त्व की स्थिति में अवस्थितपना लाना हो तो ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव को लो जिसके मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की स्थिति समान हो, किंतु सम्यक्त्व के निषेक से मिथ्यात्व का एक निषेक अधिक हो। हमने चार और पांच निषेक लिए थे। अब यह जीव जब सम्यक्त्व को ग्रहण करता है तो इसके मिथ्यात्व के अंतिम समय में सम्यक्त्व के जितने निषेक रहते हैं उतने ही सम्यक्त्व को ग्रहण करने के पहले समय में भी देखे जाते हैं। जाते करना उसे। अतः यहाँ निषेकों की अपेक्षा अवस्थित विभक्तिपना बन जाता है, तथा सम्यक मिथ्यात्व के निषेकों की अपेक्षा अवस्थित विभक्तिपना का कथन करते समय सम्यक मिथ्यात्व के निषेकों से मिथ्यात्व के दो निषेक अधिक लेने चाहिए, एक उदय रूप और एक स्थिति में एक्स्ट्रा। मिथ्यात्व में था और उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया है। शेष कथन सुगम है। आगे एवं शेषाणम कम्माणम नेदव्यम, इसी प्रकार शेष कर्मों का जानना चाहिए। इस कथन से यति ऋषभ आचार्य ने सूत्र का देशामर्शकपना जता दिया, इसलिए इसके द्वारा सूचित होने वाले अर्थ का ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर उच्चारणा का अनुगम करते हैं। अनुगम करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। स्वामित्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओग की अपेक्षा मिथ्यात्व कोमा देना 12 कषाय और 9 कषायों की भुजगार और अवस्थित विभक्ति किसके होती है? किसी भी मिथ्यादृष्टि जीव के होती है। अल्पतर विभक्ति किसके होती है? यानी भुजगार और अवस्थित में तो एकमात्र मिथ्या दृष्टि ही लेना है। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व बारह कषाय वगैरह के भुजगार होगी नहीं, ना ही अवस्थित होगी, उसमें तो सम्यक दृष्टि के तो अल्पतर होगी, मिथ्या दृष्टि के भी अल्पतर होगी, हो सकती है। अल्पतर विभक्ति किसके होती है? किसी सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव के होती है। यानी ये तो दोनों में होती है, अल्पतर तो दोनों में होती है, और भुजगार और अवस्थित मिथ्या दृष्टि के ही होती है। अनंतानुबंधी चतुष्क के उक्त तीनों पदों का कथन इसी प्रकार करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अनंतानुबंधी का भुजगार है और अवस्थित है, वो मिथ्या दृष्टि को होगा, और अनंतानुबंधी का जो अल्पतर है वो सम्यक दृष्टि के होगा, मिथ्या दृष्टि के भी होगा। परंतु अनंतानुबंधी की विशेषता क्या है? उसमें अवक्तव्य भी होगा। तो अवक्तव्य विभक्ति किसके होती है? अनंतानुबंधी चतुष्क में अवक्तव्य लगाना है। किसी एक मिथ्या दृष्टि या सासाधन सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में होती है। अब सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की ये हमने पढ़ा था, उसी में उच्चारणा फिर दोबारा चल रही है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति किसके होती है? सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के तत्प्रायोग्य जघन्य स्थिति सत्कर्म वाले और मिथ्यात्व के तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म वाले मिथ्यादृष्टि जीव के द्वारा क्या कहते हैं? सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व तो जघन्य है, और मिथ्यात्व वो उत्कृष्ट है, तत्प्रायोग्य ने सम्यक्त्व के उत्पन्न होने में उसके लिए तत्प्रायोग्य शब्द लगाए। जैसे हमने देखा था उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति के बाद उसके प्रतिभग्न काल होता है, फिर उसकी अंतर्मूल स्थिति घट जाती है, तो फिर वो सम्यक्त्व प्राप्त करता है वेदक। और यहाँ उपशम में लेना है तो उसके भी वहां तत्प्रायोग्य लगा लेना, तो तत्प्रायोग्य शब्द लगा, यानी इन दोनों की तो जघन्य स्थिति और मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति, ऐसे मिथ्यादृष्टि के जीव के द्वारा सम्यक्त्व ग्रहण करने पर उसके प्रथम समय में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति होती है, क्योंकि वहां संक्रमण से प्राप्त होते हैं, पहले कम थे अब संक्रमण से ज्यादा हो गया, क्योंकि वहां पर सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में मिथ्यात्व की उदयावली से रहित शेष समस्त स्थिति का संक्रमण देखा जाता है। शंका, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति से ऊपर शून्य में मिथ्यात्व का संक्रमण कैसे होता है? वहां कोई निषेध ही नहीं है तो उसमें संक्रमण कैसा होगा, ये प्रश्न है। समाधान, नहीं, क्योंकि वहां भी मिथ्यात्व के संक्रमण होने में कोई विरोध नहीं है। हम तो देखते हैं प्रथम उपशम सम्यक्त्व वाला जो है अनादि का वाला है, उसके तो कुछ नहीं था ना, तो उसमें मिथ्यात्व में से तैयार हुए। तो अन्य जो संक्रमण में जो बंध का नियम लागू होता है वो बंधने वाली प्रकृतियों में होता है, मिथ्यात्व में से दो प्रकृति का संक्रमण होता है उसमें वो नियम लागू नहीं है। जे हम कषाय में से नो कषाय कब होता है तो उसका नो कषाय का वहां बंध चाहिए, वैसी बात यहाँ नहीं है। अब अल्पतर स्थिति विभक्ति किसके होती है, अपनी यही शंका थी ना, इन दोनों में तो किसी एक सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव के होती है, ये तो आसान था ना। ये हम कहाँ अटके थे, उन्होंने पहले समय में ऐसा कुछ लिखा था क्या, वहाँ अटके थे तो पहले समय से दूसरे तीसरे में, तो देखो यहाँ इनका वाक्य ऐसा अटपटा था ना 9 नंबर पर। और नीचे से पांचवी लाइन में हमने पढ़ा था, जिस समय दृष्टि ने इनकी भुजगार या अवस्थित स्थिति विभक्ति नहीं की है उस समय दृष्टि के प्रथम समय में, यानी उस ऐसा लेना, इसके मिथ्यात्व के 5 निषेक थे और इसके 4 थे, यहाँ तो ये उदय रूप था, अब इस जीव को यहाँ ये हो गया, इस जीव को सम्यक तो प्राप्त हुआ। ये तो हो जाएगा, परंतु अभी सम्यक तो प्राप्त कराना है। अच्छा अच्छा, इसको जो एक समय कम किया है, जब प्राप्त किया तो इसका उदय हुआ, एक समय कम हुआ, यानी वो समान और भुजगार के लिए हमने उसमें समानता ली थी, वैसे यहाँ नहीं लेना है। तो यहाँ हमने पढ़ा किसी एक समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव के होते हैं, आना पेज 11 पर। नीचे के पैराग्राफ में दूसरी लाइन, अवस्थित स्थिति विभक्ति किसके होती है? जो मिथ्यात्व के एक समय अधिक स्थिति सत्कर्म के साथ सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ है, ऐसे किसी एक जीव के होती है। ये जो अभी हमने निषेकों को देखा था, वही अवक्तव्य स्थिति विभक्ति किसके होती है? सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व रूप सत्कर्म से रहित जो कोई एक जीव सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ है, उसके अवक्तव्य स्थिति विभक्ति होती है। इसी प्रकार ये जो कथन किया है ओग में, ऐसा ही सब नार की सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देव, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, वैक्रिक काय योगी, तीनों वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले, असंयत चक्षुदर्शन वाले, अचक्षुदर्शन वाले, कृष्णादि पांच लेशा वाले, भव्य संज्ञा और आहारक जीवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ, यहाँ पर उच्चारणा उच्चारणा करो। उच्चारणाचार्य ने अनंतानुबंधी की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति मिथ्या दृष्टि के समान सासाधन सम्यक दृष्टि के भी बतलाई है। सो इसका कारण यह है, जिसने अनंतानुबंधी की विषय योजना की है, ऐसा उपशम सम्यक दृष्टि जीव भी सासाधन गुणस्थान को गुणस्थान हुआ गुणस्थान को प्राप्त होता है। यह बात कषाय पाहुड़कार और यतिर्षभ आचार्य को इष्ट है, अतः सासाधन गुणस्थान में अनंतानुबंधी का अवक्तव्य पद बन जाता है। बात यह है कि संक्रमित द्रव्य का ये यहाँ उसका उन्होंने फिर खुलासा किया है। संक्रमित द्रव्य का एक आवली तक अपकर्षण और उदीर्णा आदि काम नहीं होते, यह एक मत है। और दूसरा मत यह है कि अनंतानुबंधी रूप से संक्रमित द्रव्य का सासाधन में उसी समय अपकर्षण और उदीर्णा संभव है, यानी उसका उदय भी होता है उदीर्णा के द्वारा। गुणधर आचार्य और यतिवृषभ आचार्य इसी दूसरे मत को मानते हैं। तदनुसार जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है, ऐसा कोई उपशम सम्यक दृष्टि जीव सासाधन में आता है, तो उसके उसी समय प्रत्याख्यानावरण आदि द्रव्य का अनंतानुबंधी रूप से संक्रमित हो जाता है। आदि द्रव्य हाँ उल्टा उसका वही तो, यानी वो अनंतानुबंधी जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान हुआ था वो वापिस अनंतानुबंधी रूप से हो जाते। इन्हीं दोनों के मत यति ऋषभ आचार्य और गुणधर आचार्य। ये प्रत्याख्यानावरण क्यों लिखा? वो प्रत्याख्यानावरण लिखा था ना? अप्रत्याख्यानावरण आदि चाहिए। और संक्रमित द्रव्य की उदीर्णा भी हो जाती है, यानी एट ए टाइम उदयावली के ऊपर वो होता है ना, और उसकी उदीर्णा से उसका उदय भी शुरू होता है। पहले ही समय से उदय शुरू होता है, उसके बिना सासाधन कैसे? अतः सासाधन गुणस्थान में अनंतानुबंधी का अवक्तव्य पद बन जाता है। यह कथन नैगम नय की मुख्यता से है, शेष कथन सुगम है। हाँ उपशम सम्यक तो जो है वो सासाधन में कैसे आता है? हाँ यह उसका एक्सप्लेनेशन आया। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में ये जो मार्गणाएं ओग के समान है उनको तो बता दिया, अब जहां डिफरेंस है उसको बताएंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में 26 प्रकृतियों की भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्तियां होती है, तीनों ही विकल्प उसमें होगी। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर विभक्ति किसके होती है? किसी भी जीव के होती है, क्योंकि वहां तो उद्वेलना चलती है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब एकेंद्रिय, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, त्रस अपर्याप्त, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों के जानना चाहिए। औदारिक मिश्र में भी ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से। आनत कल्प से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक के देवों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की अल्पतर स्थिति विभक्ति किसके होती है? इसमें अल्पतर लिया क्योंकि इसमें तो अल्पतर ही पाए जाएंगे। किसी भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव के होती है, यानी उनके एक अल्पतर वाला ही होता रहता है। अनंतानुबंधी चतुष्क की अल्पतर और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति ओग के समान है। अल्पतर वहां तो सभी को होगी और अवक्तव्य है तो जो मिथ्यात्व के प्राप्त होने पर, या अभी जैसे हमने सासाधन की बात देखी वैसे होता है। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार अल्पतर और अवक्तव्य विभक्ति ओग के समान है, यह कथन पुरानी उच्चारणा का आश्रय लेकर किया है। प्रकृति उच्चारणा में तो प्रकृत चाहिए। क्या 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 भुजगार क्यों नहीं होगी? शुक्ल लेशा है पर वहां क्या उद्वेलना नहीं होगी? हाँ तो मिथ्यात्व में से जब सम्यक तो प्राप्त करेगा, भले अंत कोड़ा कोड़ी है तो उद्वेलना करते करते अभी थोड़ा बाकी है और उसने अंत कोड़ा कोड़ी किया, होगा ना वहां पर। तो कहते पुराने उच्चारणा का आश्रय लेकर क्या है, प्रकृति नहीं चाहिए, प्रकृत उच्चारणा में चाहिए। ऊपर क्या है, यदि उच्चारणाए पुनः, यदि नहीं इस उच्चारणा में, यानी प्रकृत। प्रकृत यानी जो हाल विद्यमान, इस उच्चारणा में, प्रकृत उच्चारणा में तो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का कथन ओग के समान है ऐसा कहा है। इसलिए सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति भी होनी चाहिए। देखो अवस्थित भी लिदाला, ये जो वहां हमने घटित किया यहां भी घटित हो सकता है। अन्यथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के ओगपना नहीं बन सकता। यदि कहा जाए यह लिखने वालों का दोष है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि समुत्कीर्तना में समुत्कीर्तना में भी सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का कथन ओग के समान है ऐसा कहा है। शंका, तो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में अवस्थित विभक्तिपना कैसे प्राप्त होता है? उसका समाधान जैसे पहले हमने देखा था वही बात फिर बताएंगे। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करने वाले जिसने मिथ्यात्व के स्थिति सत्व से, स्थित सत्व हुए, स्थिति सत्व से सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के स्थिति सत्व को कम कर दिया है, जो सम्यक दर्शन के सम्मुख है, और जिसने मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक का घात करके मिथ्यात्व के स्थिति सत्व को सम्यक्त्व के स्थिति समय से एक समय अधिक कर दिया है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के वेदक सम्यक्त्व को ग्रहण करने पर सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित स्थिति विभक्ति होती है। ये ख्याल में आई बात जो हमने पहले पढ़ा था वही है, मिथ्यात्व की स्थिति विभक्ति एक समय, जरूरी नहीं कि हर बार वो डायरेक्ट बिना स्थितिघात किए वो सम्यक्त्व को प्राप्त। मिथ्यात्व में स्थिति कांडक घात होते कि होगी कि नहीं होगी, मिथ्यात्व प्रकृति में स्थिति कांडक घात किए उसे, मिथ्यात्व का स्थिति कांडक घात चल रहा है, स्थिति कांड घात में ऐसी पोजीशन बन गई मिथ्यात्व की स्थिति एक समय ज्यादा रहेगी, उनका स्थिति कांड घात उद्वेलना के कारण होता है और इसका स्थिति कांड घात विशुद्ध परिणामों के कारण होता है, क्योंकि अभी वो सम्यक्त्व प्राप्त करने जा रहा है। जैसे हम प्रायोगिक लब्धि में देखते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के वेदक सम्यक्त को ग्रहण करने पर, वेदक ही लिखा है यहाँ पर, तो प्रथम उपशम भी नहीं है, वहां भी वेदक प्राप्त करने वाले की भी दो करण होते हैं, जरूरी नहीं कि बिना करण का हर जीव करेगा, वो तो अंतर्मूर्त मात्र में करता है, उसके तो बिना करण के भी होता है, परंतु अन्यथा जो वेदक को प्राप्त करता है, क्योंकि ये तो जीव उद्वेलना करने वाला वगैरह ऐसा लिया है, यानी सम्यक में से मिथ्यात्व में आया है, लंबे काल मिथ्यात्व में रहा है, स्थिति उसके जो वेदक सम्यक्त्व आदि उसमें तो सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना भी चल रही, वेदक काल चल रहा है, ऐसा जो वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो वहां भी स्थिति कांडक तो होगी, दो करण तो होते ही है, तो दो करणों में यथायोग्य स्थिति कांड घात भी होगी वहां पर। तो ग्रहण करने पर सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित स्थिति विभक्ति होती है, क्योंकि यहां पर काल की प्रधानता है। हमने ये देखा था ना पहले, काल की प्रधानता से भी घटित करके दिखाया और निषेक की प्रधानता से भी। निषेकों की प्रधानता होने पर वेदक सम्यक्त को प्राप्त होने वाले समान स्थिति सत्कर्म वाले सभी जीवों में सम्यक्त की अवस्थित स्थिति विभक्ति होती है, ये भी हमने देखा था निषेकों की प्रधानता से। परंतु सम्यक मिथ्यात्व की नहीं होती, अतः इन दोनों की अवस्थित विभक्ति का कथन पूर्वोक्त स्थान में ही करना चाहिए। कौन सा पूर्वोक्त स्थान? मिथ्यात्व के एक समय अधिक वाला था उसका। यदि कहा जाए कि वेदक सम्यक्त्व के अभिमुख हुए मिथ्या दृष्टि जीव में स्थिति कांड घात होता ही नहीं, ये आपका प्रश्न है, सो ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले किसी भी जीव में विशुद्धि के अनुसार अनियम से स्थिति कांड घात की सिद्धि होने में कोई बाधा नहीं पाई जाती। यह बात किस प्रमाण से जानी जाती है? तो कहते इसी उच्चारणा से जानी जाती है, यानी वहां भी स्थिति कांड घात होता है, ये इसी उच्चारणा से घटित होता है। शंका, दोनों उच्चारणाओं में परस्पर विरोध कैसे नहीं माना जाए? समाधान, नहीं, क्योंकि विरोध एक नए को विषय करता है, परंतु दोनों विचारणाएं भिन्न भिन्न नए के निमित्त से प्रवृत्त हुई है, अतः कोई विरोध नहीं है। तात्पर्य यह कि जब एक ही दृष्टि से विरुद्ध दो बातें कही जाती है तब विरोध आता है, परंतु इन दोनों उच्चारणाओं का कथन भिन्न भिन्न दृष्टि से किया गया है अतः कोई विरोध नहीं आता। इसी प्रकार शुक्ल लेशा में कहना चाहिए। फिर विशेषार्थ आनतादिक में सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के अवस्थित के बिना तीन पद होते हैं और अवस्थित सहित चार पद होते हैं। इस प्रकार यहाँ वीरसेन स्वामी ने दो मतों का उल्लेख किया है। पहला मत प्राचीन उच्चारणा का है और दूसरा मत उस उच्चारणा का है जिसका वीरसेन स्वामी ने सर्वत्र उपयोग किया है। यहाँ पर वीरसेन स्वामी ने पहले मत के समर्थन या निषेध में तो कुछ भी नहीं लिखा है, हाँ दूसरे मत का उन्होंने अवश्य समर्थन किया है। पहले तो उन्होंने यह बतलाया है, यह लेखकों की भूल नहीं है। यदि लेखकों की भूल होती तो एक जगह होती, किंतु जब समुत्कर्तना में भी आनतादि में सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के पद ओग के समान बतलाया है तब इसे लेखकों की भूल नहीं कह सकते। तब प्रश्न हुआ कि यहाँ अवस्थित पद कैसे बनता है। इस पर भीमसेन स्वामी ने यह समाधान किया है, जिसने आनतादिक में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना द्वारा मिथ्यात्व से कम स्थिति कर ली है वह जब सम्यक्त्व के सम्मुख होता है तब मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति खंड के पतन द्वारा यदि सम्यक्त्व की स्थिति से मिथ्यात्व की स्थिति एक समय अधिक करके वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है तो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति बन जाती है। यह काल की प्रधानता से कथन किया है, पर जब निषेकों की प्रधानता से विचार करते हैं तब समान स्थिति वाले सम्यक्त्व की अवस्थित विभक्ति प्राप्त होती है, किंतु इस प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति नहीं बनती, क्योंकि सम्यक्त्व के बारे में तो क्या है, मिथ्यात्व में था तो मिथ्यात्व रूप से एक संक्रमित होता है, जब सम्यक दृष्टि हुआ तो सम्यक प्रकृति का उदय चलेगा, इसीलिए वेदक सम्यक्त्व लिया है, औपशमिक नहीं लिया है, तो उसका उदय है, तभी मिथ्यात्व का उदय नहीं रहा, वो उस रूप हो जाएगा। तो ये बात सम्यक्त्व के बारे में घटित होती है, सम्यक मिथ्यात्व के नहीं, क्योंकि वेदक सम्यक्त्व होने पर सम्यक मिथ्यात्व का तो उदय वहां भी नहीं और मिथ्यात्व में भी नहीं था, तो उसके तो अनुदय रूप ही है, इसलिए उसमें वो अवस्थितपना नहीं बनता। नहीं हो सकती, अभी उसकी तो कुछ उल्लेख नहीं, यहाँ पर ही नहीं लगा सकते हम। फिर भी वहाँ यथा योग्य अंत कोड़ा कोड़ी कहने में भी विरोध नहीं, क्योंकि वो स्थिति कांड घात किए है उसने, उत्कृष्ट तो नहीं कहलाएगी, यथा योग्य वहाँ भी कांड घात तो हो गए हैं। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति किसके होती है, किसी भी जीव के होती है, सभी प्रकृतियों की अल्पतर ही होती चली जाएगी। किसी भी जीव के नहीं, सभी जीवों के। इसी प्रकार आहार का योगी, कौमा लगाना, आहारक मिश्र का योगी, अपगत वेद वाले, अकषायी, अभिहुआ, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतक ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, कौमा, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, संहिता संयत, अवधि दर्शन वाले, सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इन सब में अल्पतर विभक्ति होती है, औदारिक मिश्र कायोगी जीवों में 26 प्रकृतियों की अपेक्षा 3 पदों का भंग ओघ के समान है, क्योंकि औदारिक मिश्र अवस्था है। अन्यत्र अनंतानुबंधी को अवक्तव्य वाला अलग निकालते थे, तो यहाँ तो विसंयोजना नहीं होगी अवक्तव्य वाली। विसंयोजना के बाद संयोजना होती है, तो उसमें तो नहीं होगा औदारिक मिश्र अवस्था में। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति ओघ के समान है, किसके होगी ये? उद्वेलना वाले क्यों भी होगी, मिथ्या दृष्टि के भी होगी और सम्यक दृष्टि के भी होगी। औदारिक मिश्र अवस्था सम्यक दृष्टि के होगी क्या नहीं होगी? चौथे गुणस्थान वाला हो सकता है ना उसमें, तो उसके भी अल्पतर चलेगा। इसी प्रकार वैकृत मिश्र का योगी, कार्मण का योगी और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। अभव्यों में 26 प्रकृतियों की अपेक्षा 3 पदों का भंग एकेंद्रियों के समान है। यानी 26 प्रकृतियों के तीनों ही भंग हो सकते किसी भी जीव को। इस प्रकार स्वामित्व अनुगम समाप्त हुआ। एतो एक जीवेण कालो, आगे एक जीव की अपेक्षा कालानुगम का अधिकार है। यह सूत्र सुगम है। मिच्छत्तस्य भुजगार कम्मंसियो केवचिरम कालादो होदी। अभी इसका अर्थ क्या है? काल यानी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, लगातार भुजाकार होना। एक समय में भुजाकार हुआ, दूसरे समय में हुआ, फिर तीसरे समय में हुआ, फिर चौथे समय में हुआ। ऐसा लगातार हो तो उसके लिए जगन्य कितना होगा, उत्कृष्ट कितना होगा, उसको बता रहे अभी। तो मिच्छत्व से भुजगार वो पढ़ा हमने ऊपर। मिथ्यात्व के भुजगार स्थिति सत्कर्म वाले जीव का कितना काल है, यह सूत्र भी सुगम है। तो कहते जहन्येन एक समो, जघन्य काल एक समय है, क्योंकि मिथ्यात्व की स्थिति के ऊपर एक समय बढ़ाकर बंद करने पर स्वामित्व भी बता दिया। मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति का एक समय काल पाया जाता है। यानी उसने पहले कुछ बंद किया, फिर लगातार उतना बंद चलेगा, तो एक ही लिए एक समय के लिए भुजगार हुआ, फिर उतना रहेगा। उक्कसेन चत्तारी समया, उत्कृष्ट काल 4 समय है। वो 4 संदृष्टि के लिए, उसका खुलासा इस प्रकार है। अध्याक्षय से स्थितिबंध के बढ़ाने पर, अध्याक्षय का अर्थ क्या होता है? दूसरा कौन सा क्षय होता है? स्थितिबंध के बारे में चेंज होने के लिए दूसरा कारण क्या है? एक तो आया अध्याक्षय और दूसरा एक शब्द आता है संक्लेश क्षय। परिणाम चेंज होने से, एक तो लगातार बंद होने का काल अंतर्मूर्त है, उतना का उतना बंद होने का काल, उसको कहेंगे अध्याक्षय, और परिणाम पलट गए उसको कहेंगे संक्लेश क्षय। तो अध्याक्षय से स्थिति बंध के बढ़ाने पर, अध्याक्षय हुआ ना, उसका पूर्व का बंद काल समाप्त हुआ, अभी नया बंद शुरू होगा। लगातार उतना का उतना बंद चलता रहे कायम, ऐसा कभी नहीं होता, उसमें बढ़ोती होगी या कटौती होगी। तो पहले जितना बंद करता था एक ही समय में जाके, पहला लगातार अंतर्मूर्त किया उतना, फिर एक समय के लिए उसका नया बंद जो हुआ वो बढ़कर बांधा, तो भुजगार हुआ। अध्याक्षय के कारण एक भुजगार हुआ, तो भुजगार का पहला समय होता है। संक्लेश क्षय से स्थिति को बढ़ाकर बंद करने पर, अभी क्या है, एक समय में तो उसका स्थिति बंध का काल समाप्त हुआ, परंतु दूसरे समय में उसके परिणाम भी बदल गए, तो वो संक्लेश क्षय हुआ, तो और उसका एक समय बढ़कर बंद हुआ। तो संकलेश क्षय से स्थिति को बढ़ाकर बंद करने पर दूसरा भुजगार समय होता है। अब तीसरा, एकेंद्रिय पर्याय से विग्रह करके पंचेंद्रिय में उत्पन्न होने के पहले समय में असंगी की स्थिति का बंद करने वाला जीव के, ये असंगी की स्थिति है ना, हजार सागर जितने, ये भी पहले भी बात आई है ना, एकेंद्रिय में से आया तो एकेंद्रिय जैसा बंद नहीं है, असंगी जैसा है। जीव के तीसरा भुजगार समय होता है और शरीर ग्रहण करके चौथे समय में संगी की स्थिति का बंद करने वाले जीव के चौथा भुजगार समय होता है। वहां तो अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगा, तो चौथा भुजगार हुआ। मैंने एक नियम में से विग्रह करके आया है पंचेंद्रिय, ये पंचेंद्रिय संगी में भी उत्पन्न हुआ है, तो उसके विग्रह में तो बंध असंगी जैसा है, असंगी जैसा है नहीं, हजार सागर में जो कुछ यथा योग्य कम या उतना। तो ये लगातार चार समयों तक, पहला है वो स्थिति बंध का काल समाप्त हुआ अध्यक्ष है, दूसरे समय में परिणाम चेंज हुए संकलेश है, तीसरे समय में क्या हुआ, एकेंद्रिय में से विग्रह करके आया, विग्रह करके आया है महत्व की बात, तो असंगी जितना बंद हुआ हजार सागर के करीबन, और फिर वो शरीर ग्रहण किया उसने, तो शरीर ग्रहण करने के समय में उसका वो अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगा, संगी पंचेंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था हुई ना वो, तो वहां पर भी बढ़ गया। तो ये चौथा भुजगार समय। शंका, अद्धा किसे कहते हैं, स्थिति बंध के काल को अद्धा कहते हैं, उसका प्रमाण क्या है, जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी लगातार उतना का उतना स्थिति बंध एक समय के लिए भी हो सकता है और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त तक भी उतना का उतना रह सकता है। इस अद्धा के क्षय अर्थात विनाश का नाम अद्धा क्षय है। शंका, सब जीवों के एक स्थितिबंध का काल समान परिणाम वाला क्यों नहीं होता है, परिणाम के परिमाण ऊपर क्या लिखा, समान परिणामों किन्न होती है, यानी वो समान क्यों नहीं होता है, उसका समाधान ऊपर भी परिणामों लिखा है, परिमाणों नहीं लिखा है। प्रश्न चिन्ह लगाना है तो परिमाण लिख सकते हैं। क्योंकि अंतरंग कारण में भेद होने से उसमें समानता नहीं बन सकती। स्थिति बंध का काल समान क्यों नहीं होता है? तो अंतरंग कारण में भेद है, क्यों, जीवों के जो परिणाम है कौन से, स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम, वो भिन्न भिन्न होते हैं, तो स्थिति बंध का काल भी समान नहीं होता, उसमें भी भिन्नता होती है। शंका, एक जीव के सर्वदा स्थितिबंध एक समान काल वाला क्यों नहीं होता है, नहीं, क्योंकि यह जीव अंतरंग कारणों में द्रव्यादिक के संबंध से परिवर्तन करता रहता है, अतः उसका एक ही अंतरंग कारण में सर्वदा अवस्थान नहीं पाया जाता, परिणामों के बदलने से वो अंतरंग कारण भी परिवर्तित होते रहते हैं। द्रव्यादिक के संबंध से यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव लेना या अन्य परद्रव्यों के निमित्त अंतरंग कारण लिया है ना वहां पर, यह जीव अंतरंग कारणों में द्रव्यादिक के संबंध से परिवर्तन करता रहता है। यहाँ कर्म का भी निमित्त ले सकते हैं उसमें द्रव्यादिक के संबंध में। अंतरंग कारण यानी नियम रूप कारण, हाँ कर्मों की अपेक्षा लगेगी। अभी दूसरा शब्द आया था संकलेश क्षय, तो शंका, संकलेश किसे कहते हैं उसका समाधान, क्रोध मान माया और लोभ रूप परिणाम विशेष को संकलेश कहते हैं। परिणाम विशेष में विशिष्ट परिणाम जो है उसके परिणामों के कारण उसको संकलेश कहा। वे सब संकलेश परिणाम क्या सब स्थितियों के बंध के योग्य होते हैं? क्या कहते हैं, स्थिति के जो अन्य अन्य विकल्प पाए जाते हैं तो सभी संकलेश परिणाम सभी स्थितियों के बंध के योग्य होते हैं क्या? अभी उसका समाधान नहीं, क्योंकि परिमित स्थितियों के बंध के परिमित संकलेश परिणाम ही कारण होते हैं। परिमित के बदले हम एक रेंज लेंगे, रेंज रेंज विशिष्ट रेंज तक के जो स्थिति का बंध होगा उसके लिए विशिष्ट उसके कारणभूत परिणाम होंगे। जैसे हमने देखे स्थिति बंध के अलग अलग, जो स्थिति बंध के स्थिति के विकल्प अलग अलग है। कितनी स्थिति बांधी तो मिनिमम बांधी, किसी कर्म की मिनिमम स्थिति बांधी। जैसे हम संगी पंचेंद्रियों में ही बात करेंगे, ज्ञानावरणा की, ज्ञानावरण की कम से कम स्थिति कितनी बनती है? हाँ मैंने कम से कम पूछी जगन्य अंत कोड़ाकोड़ी सागर, तो ये अंत कोड़ाकोड़ी सागर के बंध के लिए जो कारणभूत परिणाम है वो यथायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण है। वो उसकी अपनी रेंज, उसके एक समय अधिक बांधी, दो समय अधिक बांधी, तीन समय, अभी उत्कृष्ट तक चले जाओ तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर आबादा मैंने बताई, पर हमें स्थिति बंध देखना है तो उसके अपने कारणभूत परिणाम उसकी अपनी रेंज जो परिणामों की वो अलग अलग है, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण होगी। तो यहाँ क्या कहते हैं, परिमित स्थितियों के बंध के परिमित संकलेश परिणाम ही कारण होते हैं, उसका खुलासा इस प्रकार है। सबसे जघन्य बंध का नाम ध्रुव स्थिति है, श्रेणी को नहीं कहा, श्रेणी को यहां से ओमिट करेंगे क्योंकि श्रेणी में तो बहुत जघन्य से भी नीचे हो जाता है। संगी पंचेंद्रिय के योग्य जो श्रेणी के अलावा उसको कहेंगे शायद, उस स्थिति के बंध के योग्य असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान होते हैं। स्थिति बंध अध्यवसान स्थान का अर्थ होता है स्थिति बंध के लिए कारणभूत कषाय के परिणाम। स्थिति काहे से बनती है? कषाय से बनती है। अनुभाग भी कषाय से बनते हैं, अनुभाग के कारणभूत परिणाम और अलग बताएंगे, जैसे हमने भाव परिवर्तन में देखे थे। यहाँ तो इतनी बात है, अलग अलग स्थिति के बंध के कारणभूत परिणाम अलग अलग है, उसको कहते हैं स्थिति बंध अध्यवसान स्थान। जो षट्स्थान पतित वृद्धि की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण 6 स्थानों के साथ अवस्थित है, एक विशिष्ट स्थिति बांधती है, कुछ भी एक समयों की स्थिति बांधेगी। हम जगन्य में जगन्य लेते हैं, उस विशिष्ट एक समय वाला, उससे x प्लस 1 वाला वो अलग होगा अपना, तो इसका रेंज, इसकी रेंज कितनी है? तो असंख्यात लोक प्रमाण इसके अलग अलग स्थान है, तो ये असंख्यात लोक प्रमाण स्थान कितने हैं? तो उसमें जो शुरुआत का जो स्थान था उसको हम अविभाग प्रतिच्छेदों में गिनेंगे, तो उसके आगे वाला, उसके आगे वाला, उसके आगे वाला, ऐसे अलग अलग स्थान देखेंगे तो एक बार षट्स्थान वृद्धि हुई। षट्स्थान में क्या क्या आता है मालूम है? अनंत भाग वृद्धि, तो उसके कितने ही असंख्यात स्थान जाने के बाद एक बार असंख्यात भाग वृद्धि, ऐसे करते करते उस वो भी असंख्यात बार होइए तो संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि एक बार होती है, उसके बीच में ये बाकी स्थान तो असंख्यात असंख्यात चले जाते हैं। जब एक बार अनंत गुण वृद्धि हुई फिर वही षट्स्थान वाली वृद्धि फिर दोबारा कहेंगे, तो दूसरी बार षट्स्थान वृद्धि हुई, तीसरी बार षट्स्थान वृद्धि हुई, ऐसे यहाँ ये जितने हमने एक विशिष्ट समय बांधने के परिणाम है वो कितने हैं, तो उसमें ये ऐसे कितने बार षट्स्थान वृद्धि हुई, असंख्यात लोक बार। एक विशिष्ट समय बांधने के लिए कारणभूत परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है, परंतु वो असंख्यात लोक परिणाम, असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों में कितनी वेरिएशन है, तो असंख्यात लोक बार षट्स्थान प्रतीत वृद्धि के स्थान है, यानी उसका प्रमाण और कितना बढ़ेगा, क्योंकि एक बार षट्स्थान प्रतीत वृद्धि होती है तो उसमें ही असंख्यात असंख्यात स्थान चले जाते हैं। हमने देखे थे ना ये सारे स्थानों की चर्चा की थी, मेरे ख्याल से धवला में एक पुस्तक केवल ये षट्स्थान प्रतीत के उसके ऊपर ही है। एक समय अधिक, अभी हमने जो ध्रुव स्थिति हमने एक से देखी थी, जगन्य में जगन्य स्थिति बंध है केवली गम्य, परंतु श्रुत आचार्यों ने लिखा जो जो केवली गम्य है, परिणामों को हम ऐसा नहीं जान रहे कि इसकी कितनी वृद्धि हो रही है, परंतु कितनी वृद्धि होती है कितनी हानि होती है जो केवली ने बताया है वो हम आगम के द्वारा जानते हैं, ये श्रुत ज्ञान का भी विषय है, नहीं तो हम आप कैसे बताते उसके बारे में। आगम से हमने पढ़ा है, उन्होंने भी भगवान के उपदेश से जाना है, और श्रुत ज्ञान में तो इतनी कैपेसिटी है, वो तो इमेजिन हम कर सकते हैं कि एक समय अधिक कभी बंद हुआ है, तो उसके कारणभूत परिणाम उसके असंख्यात लोक प्रमाण हो गए। हाँ, सर्वावधि में उसमें से कुछ विषय जानेंगे, क्योंकि उनका विषय भी असंख्यात लोक वाला है,
जैसे हम
परंतु वो तो परिणामों को नहीं जानेंगे, स्थिति बंध को जानेंगे।
देखो जैसे हम अनंत का जो कोई भाग तो है वह तो केवली भगवान ही जानते हैं अनंत क्या होता है, फिर भी हम कहते हैं ना जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है, हम भी तो श्रुत ज्ञानी है, लेकिन वो अनंत की जो कुछ मैग्नीट्यूड जो कुछ होगा वो तो हमारे ज्ञान में नहीं है, सिर्फ हम ये बता सकते। ऐसे यहाँ पर भी जो छठस्थान पतित हानि वृद्धि की जो बात है वह केवली गम्य ही है, लेकिन उसका प्रमाण क्या हो सकता है वो तो जानेंगे, लेकिन वो एक्चुअली प्रमाण कितना है वो नहीं जानेंगे, हम तो केवल असंख्यात है इतना ही बताएंगे, जानेंगे बताएंगे क्या।
यहाँ बात है ना कर्मों की अवस्थाएं तो जानेंगे अवधि ज्ञानी, परंतु वो परिणामों को नहीं जानेंगे, वो उनका विषय नहीं है, वो भी आगम के द्वारा जानेंगे, क्योंकि जो अवधि ज्ञानी वो बेसिकली शुद्ध ज्ञानी तो है ही ना, अवधि ज्ञान से वो नहीं जानेंगे, परंतु अवधि ज्ञानी जीव इसको जान सकेंगे। अब एक समय अधिक स्थिति की बात कर रहे हैं, नहीं वो भी दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानते, तो मन परे ज्ञानी भी ये स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कषाय अध्यवसाय, ये तो जीवों के परिणामों की बात चल रही है, ये उसके मन में ये बातें नहीं चल रही है। कर्मों के मांगे वो कैसे माया लगाएंगे, कर्म कितने परमाणु इतने जानेंगे, इसके सत्ता में कितने कर्म है उसको जानेंगे, ख्याल में, और सभी परमाणु को भी परमाणु तक को भी जानेंगे, तो उसकी सभी अवस्थाओं को तो नहीं जानते, कुछ अवस्थाओं को जानते हैं। देखो ये तो हमने जघन्य स्थिति यानी जिसको ध्रुव स्थिति कही, नहीं क्योंकि ये जो लगातार हमने जो देखे थे ना लगातार लेने एक समय एक समय एक समय, क्योंकि हमें क्या लेना है स्थिति बंधक एक एक समय से बढ़ते हुए परिणाम लेने, अगर बादर एक इंद्रिय से लेते हैं तो बीच में गैप हो जाएगी, एक सागर से लेकर 25 सागर तक के। तो संगी पंचेंद्रिय के जघन्य से लेकर हम बात करेंगे इसमें, ये भाव परावर्तन के लिए। इसमें तो सभी ले सकते हैं, भाव परावर्तन के लिए एक एक समय से बढ़ते हुए जो हमने देखे थे, तो एक इंद्रिय के अपने योग्य स्थिति बनने के अलग अलग परिणाम होंगे, उसकी अपनी रेंज होगी जघन्य से उत्कृष्ट तक की। द्विंद्रिय की अपनी जघन्य से उत्कृष्ट तक की रेंज होगी, तीन्द्रिय की अपनी जघन्य से उत्कृष्ट तक रेंज होगी, चतुरिंद्रिय की भी। अभी यहाँ जो हमने अंत कुड़ाकुड़ी देखी वो संगी पंचेंद्रिय के लिए देखी। हमें तो ये विषय समझना है ना, किसी भी जीव का जघन्य से उत्कृष्ट तक हम घटित कर सकते हैं। अभी यहाँ बात होगी जो अभी आगे बता रहे हैं, एक समय अधिक ध्रुव स्थिति बंध के योग्य भी इतने ही स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान होते हैं। अभी ये जो असंख्यात लोक है ना, उसके बदले हम यहाँ वाय समझेंगे, होता है इसीलिए इसको वाय समझा। असंख्यात लोक प्रमाण जो स्थान है ना, यहाँ स्थिति कितने समयों की बंदी, तो एक समय की बंदी, उसके कारणभूत परिणाम अलग अलग कितने हैं, तो वाय प्रमाण है। अब आगे का वाक्य पढ़ेंगे, एक समय अधिक ध्रुव स्थिति बंध के योग्य भी। अभी कितनी स्थिति बांधी, x प्लस 1 समय, उसके योग्य परिणाम कितने होंगे, तो उतने ही होंगे। उतने ही का अर्थ क्या है, असंख्यात लोक ही होंगे जिसमें असंख्यात लोक प्रमाण षटस्थान होते हैं, परंतु ये वाय नहीं होंगे, तो कितने होंगे। किंतु इतनी विशेषता है कि वे परिणाम ध्रुव स्थिति के परिणामों में पल्लोपम के असंख्यात वे भाग का भाग देने पर जितना लब्ध आवे उतने ध्रुव स्थिति के परिणामों से अधिक होते हैं। यानी यहाँ जितने परिणाम है ना वाय को विशिष्ट असंख्यात का भाग देना, कौन सा असंख्यात, पल्ले का असंख्यात का भाग। हम ऐसा कहेंगे ना, वाय को असंख्यात का भाग देंगे, वो पल्ले का असंख्यात का भाग को हम केवल असंख्यात कहेंगे। तो ये मूल में मिला देना, y प्लस y डिवाइडेड बाय असंख्यात, इसको हम कहेंगे असंख्यात वा भाग अधिक, यानी असंख्यात भाग वृद्धि वाला होगा आगे का। जो यहाँ भी असंख्यात लोक है, यहाँ के परिणाम कितने हैं, तो इसके अपने योग्य y प्लस y का असंख्यात वा भाग, और ये ओवरलैप भी होते हैं। विशिष्ट परिणाम x वाले भी समय की स्थिति बन सकते हैं, x प्लस 1 भी बन सकते हैं। अभी वो यहाँ का विषय लिया है कि नहीं मालूम नहीं आगे, परंतु उसके टोटल स्थान ज्यादा है, असंख्यात वे भाग से अधिक है। हाँ, y का असंख्यात वा भाग, पल्ले के असंख्यात वे भाग से y को भाग देना है। नेचुरली वाय बहुत बड़ी है ना, वाय तो कितना है, असंख्यात लोक में भी असंख्यात लोक बार शस्थान बुद्धि है। बहुत बड़ा असंख्यात है, उसको बहुत छोटे असंख्यात से भाग देना आएगी, पर वो मूल में मिला देना है। हाँ, होने दो ना, बहुत भी बड़ी आएगी तो उतनी तो वाय जितनी तो बड़ी नहीं है। जैसे लाख है हमारे पास, और उसमें कितने मिलाना, लाख डिवाइडेड बाय 2 मिलाना, जो कुछ है वो तो आधा तो नहीं है, मगर फिर असंख्यातवा भाग है। किंतु वो कितना लब्ध है, उतने ध्रुव स्थिति के परिणामों से अधिक होते हैं। इस प्रकार 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, अभी यहाँ तो मोहिनी की बात चल रही है, मिथ्यात्व की बात चल रही है। तो जघन्य अंत कोड़ा कोड़ी से हमने शुरू किया था, वो एक इंद्रियों को तो हमने अभी यहाँ लिया भी नहीं है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति के अंतिम समय तक वे परिणाम उत्तरोत्तर विशेषाधिक क्रम से स्थित है। हमने पहले वाय लिया, फिर दूसरे समय के लिए, एक समय अधिक स्थिति के लिए वाय प्लस उसका असंख्यात्व भाग, फिर जितना है उसका असंख्यात्व भाग उसमें और मिला दो, उसका असंख्यात्व भाग उसमें मिला दो, यानी हर बार वाय प्लस समथिंग होगा ना, तो कितने समय हो गए? 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट। अभी हमने अंत कोड़ा कोड़ी से शुरू किया, वो जघन्य लिया, जघन्य में एक समय अधिक, दो समय अधिक, तीन समय अधिक, चार समय अधिक, अरे आवली के भी समय गिनेंगे तो जघन्य युक्ता संख्यात होते हैं, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के समय कितने हो गए? उसमें हर एक समय के लिए अपनी अपनी परिणामों की रेंज अलग। पुनः ध्रुव स्थिति के असंख्यात लोक पर प्रमाण परिणामों के, पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण खंड करने चाहिए। ये जो पहले में मूल वाय लिए थे ना हमने, वाय के असंख्यात लोक प्रमाण खंड करेंगे। जो परस्पर विशेषाधिक है, अब ये जो है ना सारा, ये अनुकृष्टि रचना जो हमने देखी थी अध प्रवृत्त करण में, वैसा है ये। आपको याद होगा वहां जो परिणामों के हमने 162 परिणाम लिए थे और उसके चार खंड किए थे, 39, 40, 41 और 42। तो ये एक एक से बढ़ते हुए खंड किए, वैसे ही ये जो वाय परिणाम है उसके कितने खंड करने? असंख्यात लोक प्रमाण, और एक एक खंड से दूसरा खंड थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना। अब आगे क्या कहते हैं देखो, इनमें हाँ, ध्रुव स्थिति के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, तो उसमें खंड कितने करना? हाँ, पल्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण खंड करना। जैसे हमने यह 162 के चार खंड किए, वैसे वाय के खंड कितने करना? पल्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण उसके खंड करना। आगे क्या करेंगे देखो, जो परस्पर विशेषाधिक है, पहले खंड से दूसरा खंड ज्यादा है, तीसरा खंड उससे ज्यादा है, चौथा खंड उससे ज्यादा है, जैसे हमने अभी देखा ना 39, 40, 41, 42। इसी प्रकार सब स्थितियों के परिणाम स्थानों में खंड करने चाहिए, या हर एक के जो परिणाम स्थान है उसमें भी उतने ही खंड करने। जैसे हमने चार खंड किए हैं, वैसे उत्तरोत्तर परिणाम भी बढ़ेगी ना, अभी 162 के बदले 166 हो जाएंगे, तो उसके भी चार खंड करने, वो 40, 41, 42, 43 हो जाएंगे। फिर 170 के भी करेंगे तो 41, 42, 43 ऐसे खंड करेंगे, उत्तरोत्तर बढ़ेंगे। जैसे 162 से ये चार बढ़ गए हैं, परिणाम यहाँ बढ़ गए, वाय के बदले हम 162 लेते हैं, और पल्ले के असंख्यात विभाग के बदले चार खंड किए हम देखेंगे, तो चार खंड उत्तरोत्तर अधिक दिए, 39, 40, 41, 42। फिर पहले सुनो, फिर एक समय अधिक स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम है 166, उसके भी उतने ही खंड करने हैं, चार खंड करने हैं, तो उसमें भी वो परिणाम अलग अलग कितने होंगे? तो उसके भी चार खंड किए तो 40, 41, 42, 43 ऐसे उसके खंड हो गए। ये पूरा पढ़ते फिर आप शंका पूछना। हाँ, इसी प्रकार सब स्थितियों के परिणाम स्थानों में खंड करने चाहिए, खंड तो उतने ही हो गए। इसका पहला खंड है, उससे ये बढ़कर होगा। खंड में क्या होता है? परिणामों के अलग अलग स्थान होते हैं, अलग अलग परिणाम कितने हो सकते हैं? तो पहले में जैसे हमने 1 to 39 परिणाम है, दूसरे में 40 to 79 परिणाम है, उनकी टोटल संख्या गिनेंगे 40, 41, 42, 43 ऐसे, तो वो 40 हो जाएगी। इस तरह से उसको गिनना है। इनमें ध्रुव स्थिति के पहले खंड में स्थित असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानों से ध्रुव स्थिति का ही बंध होता है, अगली स्थितियों का नहीं। ये ओवरलैपिंग हमने y के साथ y प्लस वन का y प्लस उसका असंख्यात भाग का लिया था, ये हमने y के ही खंड किए हैं। y के खंड कितने हैं? 39, 40, 41। अभी y के बदले 162 समझो, और y का असंख्यात भाग उसमें मिला दिया तो हमने 162 के बदले 166 हो गए। वो किसके है? ये ध्रुव स्थिति प्लस एक समय के लिए कारणभूत परिणाम है। ध्रुव स्थिति प्लस दो समय के कारणभूत परिणाम 170 हुए, तो 160 में एक और कुछ मिला दिया। तो हर एक के जो अलग अलग जो है उसके खंड करना है। 162 के चार खंड किए, 39, 40, 41, 42 हुए। 166 के भी चार खंड किए, 40, 41, 42, 43 हो गए। 170 के किएंगे तो 41, 42, 43, 44 हो जाएंगे। तो ऐसे हर एक के करना। तो ये जो अभी आगे जो पढ़ेंगे ना तो और ख्याल में आएगा। देखो कल ये शुरू से फिर ले लेंगे। देखो इनमें ध्रुव स्थिति के पहले खंड में स्थित असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानों से ध्रुव स्थिति का ही बंध होता है, अगली स्थितियों का नहीं। अब ये जो ये 39 वाला समझना, 39 जो परिणाम है, 39वां परिणाम नहीं कहा, 39 जो परिणाम है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 39 अलग अलग परिणाम है, वो भी कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। उनसे क्या होगा? एकमात्र ध्रुव स्थिति ही बंधेगी, जैसे हमने देखा है। ये y है, इसके हमने चार खंड किए। y की संख्या कितनी है? 162 समझी हमने, असंख्यात लोग के बदले 162। उसमें ये 39 है, ये 40 से लेकर आगे के है, परंतु उनकी संख्या कितनी है? तो 40 है। आगे की संख्या कितनी है? 41। ये सबकी टोटल 162 होती है। ये 40वां नहीं समझना, ये 40 अलग अलग परिणाम है। 40 से लेकर आगे 79 तक गिनो, 40 को भी नहीं, 79 को भी गिनो तो 40 हो जाएंगे। हाँ, फिर 80 से लेकर आगे 120 तक, हाँ 121 to 166 तक। तो ये जो है परिणाम, 39 से मात्र वो एक वाला ही स्थिति बंद होगा। अब आगे के खंड कैसे किए हमने? 40, 41, 42 और 43। अब यहां से ओवरलैपिंग होगा, y प्लस उसका असंख्यात भाग है ना, ये जो वाले थे 162 वाले थे, 166 वाले हैं। 166 में 40 के भी, 41 के भी है, 42 के भी है और 43 के भी है, यानी इसमें ये तीन तो ओवरलैपिंग हो जाएंगे। तो 39 से मात्र x का ही बंद होगा। 40 परिणाम ऐसे है बीच के, उसमें तो x का भी बंद हो सकता है, किसी को x प्लस वन समय का भी बंद हो सकता है। अब जो 41 वाला होगा उससे x का भी बंद होगा, x प्लस वन का भी होगा, आगे चलकर हम देखेंगे यहाँ पर x प्लस टू समयों का भी बंद हो सकता है। तो ऐसे ओवरलैप करते 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 आगे के स्थान हो गए, इसकी चर्चा कल करेंगे। फिर ये सिमिलर टू जो अदब प्रवृत्तकरण के परिणाम होते हैं उसमें भी यही संदृष्टि ली है। हाँ, ये पूरा समाधान, शंका समाधान, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा विषय है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नहु सदा देत हो। प्रेरणा भैया।